जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदेश दिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय सात श्लोक संख्या 47 सबने निकाल लिया सबने निकाल लिया मिल गया सबको पेज नंबर 415। इसकी तो जरूरत भी नहीं है, अगर सबके पास है तो इसकी जरूरत भी नहीं है।
है सबके पास नहीं हो पाती,
सबके पास नहीं हो पाता। अच्छा, सबने निकाल लिया, नहीं मिला माता जी?
नहीं, मैसेज गलत है, वो मैसेज गलत था, 55-46 का था मैसेज, ये वास्तव में ये होना
है। 47 दो सात 47 सही है, सही है। मेरे पीछे बोलिए, शब्दो न यत्र पुरुकार के वान क्रियार्थो। अच्छा अच्छा, इसके पहले वाला हाँ,
छह लोग, छह पंक्तियाँ शुरू हुई।
हाँ ठीक ठीक, छह पंक्तियाँ हैं, ठीक है। सरस्वत प्रशांतम अभयम् प्रतिबोध मात्रम्। शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्व। शब्दो न यत्र पुरुकार के वान क्रियार्थो। माया परत्यभिमुखे च विलज्यमानां। तन्वै पदं भगवता परमस्य पुंसो। ब्रह्मेति यन्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। सस्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम्। शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारक वान क्रियार्थो। माया परत्यभिमुखे च विलज्यमाना। तन्वै पदं भगवता परमस्य पुंसो। ब्रह्मेति यन्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। सस्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम्। शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम्। शब्दो न यत्र पुरुकारक वान क्रियार्थो। माया परत्यभिमुखे च विलज्यमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो। ब्रह्मेति यन्विदुरजस्र सुखं विशोकम्। अब हम सीधे शब्दार्थ में जाएंगे, क्योंकि समय सीमित है, तो आप लोग क्षमा करें, आप लोगों को दोहराने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। शब्दार्थ बोलिए, सस्वत नित्य प्रशांतम शांत अभयम निर्भय प्रतिबोध मात्रम। भौतिक चेतना के बिल्कुल विपरीत चेतना, शुद्धम शुद्ध मल रहित, समम भेद रहित, सत असतः कारण तथा कार्य का, परमात्म तत्त्वम आदि कारण का नियम, शब्दः काल्पनिक ध्वनि न नहीं यत्र जहां पूर्व कारकवान सकाम कर्म देने वाला क्रिया अर्थः यज्ञ के हेतु माया माया परेति भाग जाती है अभिमुखे के समक्ष च भी विलज्जमाना लज्जित होकर तत् वह वै निश्चय ही तदम परम अवस्था भगवतः श्री भगवान का परमस्य परम पुंसः पुरुष का ब्रह्म ब्रह्म इति इस प्रकार यत् जो विदुः विदित अजस्र असीम सुखम सुख विशोकम शोक रहित। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अंतिम अवस्था है। ये गलत छपा है ना, अनंतिम लिखा है, अंतिम होना चाहिए, है ना, छपाई गलत है, अंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों के आदि कारण हैं। का लिखा है, लिखे हैं क्या होना चाहिए, कार्यों के आदि कारण जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके सामने माया ठहरती है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे श्लोक, श्लोक के शब्द क्या हैं। ये श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं बताएं, कौन कौन बताएगा, कौन कह रहे हैं श्लोक है, कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। उसी से परंपरा में हम लोग भी हैं, ब्रह्मा जी उनके बाद नारद जी, उसी से परंपरा में ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो हमारी गुरु परंपरा के सबसे पहले आचार्य दूसरे आचार्य को ज्ञान दे रहे हैं। इसमें श्लोक देखिए, श्लोक में क्या है, शश्वत प्रशांतम, है ना, शश्वत प्रशांतम अभयम। तो शश्वत का मतलब है नित्य है और प्रशांतम का मतलब है खूब शांत, अच्छी प्रकार से शांत, है ना। तो इस श्लोक में वो शब्द कहाँ पर है, आप देख रहे हैं इस श्लोक में शब्द कहाँ है, जो अनुवाद है, अनुवाद में शब्द कहाँ पर है, शश्वत प्रशांतम, अनुवाद में कहीं पर है ये, शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित। प्रशांतम का मतलब एक ये भी है, सारे विघ्नों से रहित हो, शश्वत प्रशांतम, और शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित हैं। शश्वत प्रशांतम का अनुवाद प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित हैं। कौन, भगवान, भगवान शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित हैं। बहुत अच्छा अर्थ है ये, शश्वत प्रशांतम। प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांतम, प्रकृष्ट रूप से शांत है। तो हमारे गृह जीवन में कितने विघ्न आते हैं, उसी से अशांति होती है, विघ्नों के कारण ही तो अशांति होती है ना, विघ्नों के कारण ही अशांति होती है। है ना। तो भगवान का जो है सबसे पहला लक्षण क्या है, शाश्वत प्रशांतम, शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहे हैं। ये नहीं कि अभी कुछ विघ्न टल गया तो हम कहते हैं हाँ हो गया काम हो गया, विघ्न तो और आने वाले हैं, वो तो आते ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान कैसे हैं, शाश्वत प्रशांतम, शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहे थे। इसके बाद श्लोक में शब्द क्या है, श्लोक में शब्द क्या है, शाश्वत प्रशांतम के बाद अभयम, अभयम अनुवाद में क्या लिखा है, निर्भय हैं तथा निर्भय हैं, भगवान को कोई भय नहीं है, है? सारे विघ्नों से रहित हैं शाश्वत रूप से और अभय निर्भय हैं, शाश्वत रूप से निर्भय भी हैं, है ना। इसके बाद शब्द क्या है श्लोक में, प्रतिबोध मात्रम, प्रतिबोध मात्रम है ना, मतलब ज्ञान मात्र है। इसमें अनुवाद में कहाँ लिखा है, ये पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है, प्रतिबोध मात्रम, भगवान जो है पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है, प्रतिबोध मात्रम। जबकि हमारी स्थिति क्या है, पदार्थ और चेतना दोनों का मिश्रण है, शरीर पदार्थ है ना, आत्मा चेतन है ना। तो इसमें मतलब बहुत बाधा है, लेकिन भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनका शरीर और आत्मा दोनों क्या है, पूर्ण चेतन है, पूर्ण आत्मा है भगवान, प्रतिबोध मात्रम है ना, ये पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। हमारी स्थिति कैसी है, पदार्थ और चेतना का मिश्रण है ना। इसके बाद श्लोक में शब्द क्या है, शुद्धम, शुद्धम, तो देखिए अनुवाद में क्या कहाँ है, हाँ संदूषण से मुक्त है, संदूषण से सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, अशुद्धियों से मुक्त है, शुद्धम, तो भगवान में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, शुद्धम है ना। इसके बाद शब्द क्या है श्लोक में, सम, तो अनुवाद में क्या है, भेद रहित हैं, समम का मतलब है भेद रहित है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं, मतलब इसमें उनका नाम है रूप है, तो हमारे नाम में रूप में भेद है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में किसी प्रकार का भेद नहीं है, समम। इसके बाद श्लोक क्या है, श्लोक में शब्द क्या है, सत असतः परम, सत असतः परम, तो सत का मतलब है, इसमें शब्दार्थ में क्या लिखा है, सत कारण और कार्य का, सत का मतलब कारण और असत का मतलब कार्य है, और परम का मतलब है परे, तो इसमें कहाँ लिखा है, समस्त कारणों और कार्यों के आदि कारण है, सत का मतलब कारणों और असत का मतलब कार्यों के आदि कारण है, परम आदि कारण है, सत असतः परम। इसके बाद क्या है शब्द, आत्मतत्वम, आत्मतत्वम परम आत्मतत्वम, तो अनुवाद में कोई शब्द है ऐसा आत्मतत्वम जैसा, नहीं है, आत्मतत्वम परम आत्मतत्वम, इसमें शब्दार्थ में क्या लिखा है, आदि कारण का नियम, फिर जो भी हो, अब अगर नहीं मिलता है तो समझ लो आत्मतत्वम, भगवान जो है सत्य हृदय में स्थित आत्मा है। इसके बाद शब्द क्या है, शब्दो नयत्र, शब्दो नयत्र, जहाँ पर शब्द काम नहीं करता है, जहाँ पर शब्द काम नहीं करता है, कैसा शब्द, पुरुकारकवान, बहुत से इसमें शब्दार्थ लिखा है, पुरु सकाम कर्म देने वाला, सकाम कर्म देने वाला शब्द, जो वेदों में शब्द है ना सकाम कर्म देने वाले, तो वो शब्द जो है जहाँ काम नहीं करते हैं, अनुवाद में कहीं है कहीं, सबसे अंत में, हाँ जिनमें सकाम कर्म के करने, सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है, हाँ तो ये पूर्व कारकवान का मतलब सकाम कर्मों के लिए, क्रियार्थो, क्रियार्थो का मतलब यज्ञ, जहाँ पर ऐसा शब्द काम नहीं करता है जिसमें सकाम कर्मों के लिए यज्ञ किया जाए, शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो, ये शब्द काम नहीं करते, भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए ये शब्द काम नहीं करते हैं, ये शब्द काम में नहीं आते हैं। वेदों के शब्द हैं जिनमें सकाम कर्म के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन ये वेदों के शब्द भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। शब्दो नयत्र पूर्व कारकवान क्रियार्थो, इसके बाद शब्द क्या है, माया परेति, माया परेति मतलब माया भागती है, जिनके सामने से माया भागती है, इसमें क्या लिखा है, हाँ नहीं ठहरती है, तो परेति का मतलब भागती है या नहीं ठहरती है, अनुवाद में लिखा है माया भागती है। अभिमुखे, अभिमुखे माने सामने, जिनके सामने से माया भागती है, यानी माया पीछे रहती है उनकी, जिनके सामने से माया भागती है तो माया हमेशा उनके पीछे रहती है, माया सामने नहीं आती है ना। माया परेति अभिमुखे च विलज्जमाना, बहुत लज्जित होती है, शर्माती है उनके सामने माया, इसमें वो शब्द नहीं आया विलज्जमाना, लेकिन समझना चाहिए कि माया जो है उनके सामने शर्मा करके भाग जाती है ना, अभिमुखे उनके सामने आने में शर्मा करके भाग जाती है, विलज्जमाना। इसके बाद शब्द क्या है, तद्वै पदम भगवतः, तो वो पद है भगवान का, परमस्य पुंसो परम पुरुष का है, इसमें क्या लिखा है, इसमें है कुछ शब्द अनुवाद में, हाँ ठीक है जो भी हो, तो समझना चाहिए कि परम पुरुष का वो पद है, ब्रह्मेति ब्रह्म इति, इसमें अनुवाद में लिखा है परम ब्रह्म के रूप में, यद विदुः जिसको जाना जाता है या अनुभूति की जाती है, यद विदुः अजस्त्र सुखम, अजस्त्र सुखम असीम सुख लिखा है, हाँ असीम आनंद, अजस्त्र सुखम असीम आनंद, अजस्त्र सुखम, हाँ असीम आनंद, असीम आनंद से युक्त हैं, और फिर विशोकम शोक रहित है, उनका आनंद असीम है और शोक रहित है, दो विशेषताएं उनके आनंद की, उनके आनंद में दो विशेषताएं हैं, एक तो है असीम और दूसरा शोक रहित है ना, ये दो विशेषताएं हैं, चलने दो चलने, हमारे आनंद में दोनों विशेषताएं नहीं है, ना तो असीम है आद्यंत बनता सीमित होता है आनंद, और फिर शोक भी बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये सुख क्यों पाया, क्योंकि इसका परिणाम दुख मिलता है, इसलिए शोक शोक होता है ना। लेकिन भगवान के आनंद में एक तो असीम है आनंद और दूसरा शोक रहित है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शीला प्रभुपाद की, इस ये तात्पर्य जो है प्रभुपाद का दो पेज ढाई पेज का है ना, ढाई पेज का है, तो सुनिए प्रभुपाद लिखते हैं, परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म है या परम आश्रय हैं, क्योंकि वे ही समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त कारणों के कारण है? इसमें श्लोक में क्या है, सत असतः परम, कार्य और कारणों के भी परम कारण, समस्त कारणों के कारण है। इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि इस संसार की भ्रांत धारणा, इस संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न है भगवान, तो भ्रांत धारणा क्या है, इस भौतिक संसार में भ्रांत धारणा क्या होती है कि हमारा शरीर जैसे जन्म मरण से बना हुआ है, हमारे शरीर में जन्म मरण है, तो भगवान के शरीर में भी जन्म मरण है ना, तो ये जो है भगवान में जो है ये धारणा नहीं है, नितांत भिन्न है। भगवान को समझने के लिए हमें एक धारणा ये बनानी होगी कि नितांत भिन्न है, तो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है, निर्गुण ब्रह्म यानी निराकार, निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है, निराकार ब्रह्म की अनुभूति सबसे पहले होती है, जिसमें रूप नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, क्या है वो, समम, समम का मतलब है भेद रहित, कोई वैरायटी नहीं, निर्गुण ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो पहला चरण है। इस भौतिक संसार में क्या है, जितनी वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं, है ना। तो निर्गुण ब्रह्म में वो विविधताएं नहीं है, एक प्रकाश मात्र है ना। तो भगवान का जो है सबसे पहला साक्षात्कार है। आगे दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म परम ब्रह्म का एक लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। भौतिक विविधता है ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहला भगवान का जो साक्षात्कार है वो किस रूप में होता है, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म में कोई विविधता नहीं है। तो सबसे पहला साक्षात्कार भगवान का। आगे प्रबलते हैं, ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश उसके प्रतिरूप अंधकार से एक भिन्न धारणा है। तो प्रकाश सबसे पहले भगवान क्या है, प्रकाश है। लोग कहते हैं ना गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट। तो पहला साक्षात्कार है गॉड इज लाइट। ये भौतिक संसार क्या है, अंधकार। भौतिक संसार क्या है, अंधकार। तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हम प्रकाश में जाएं, अंधकार में क्यों रहें। तो वहाँ पर प्रकाश है ना। फिर किंतु प्रकाश में विविधता होती है। अब आगे और साक्षात्कार होगा भगवान का, तो क्या होगा, प्रकाश में विविधता। आगे जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। दूर से प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन जब पास में आता है तो फिर विविधता दिखाई पड़ती है। जैसे कि सूर्य का साक्षात्कार सबसे पहले क्या है, प्रकाश है। फिर और आप देखते हैं आकाश की तरफ तो सूर्य का मंडल दिखाई पड़ता है, एक मंडल है। और फिर और अगर जाएं सूर्य मंडल में, सबकी योग्यता तो नहीं है, कोई अगर जाए सूर्य मंडल में तो फिर उसमें और वैरायटी दिखाई पड़ेगी। सूर्य देवता हैं, उनके रथ के साथ घोड़े हैं, सारथी है, और जो है 60,000 बाल खिल्ले मुनि हैं वहाँ चल रहे हैं, और कितनी पब्लिक है सूर्य लोक में, कितनी पब्लिक। तो वैरायटी बाद में पता चलेगी, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि जो प्रकाश की ओर जब अग्रसर होते हैं जो लोग, तो वो जान पाते हैं कि कितनी विविधता है। ये जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी का उदाहरण लीजिए। रेलगाड़ी का सबसे पहला जो साक्षात्कार होता है वो क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश दिखाई देती है, उसकी लाइट दिखाई देती है, भाई लाइट है, है ना। और पास में जब आती है तो आपको क्या दिखाई पड़ती है, प्रकाश तो है ही है, बहुत से डिब्बे भी, है ना। और जब वो प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाती है तो आप देखते हैं डिब्बों में कितने यात्री अंदर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, कितनी वैरायटी से, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि भगवान का पहला साक्षात्कार ब्रह्म है, जो प्रकाश है इस भौतिक संसार के अंधकार से बिल्कुल विपरीत। लेकिन वह वो उसमें विविधता नहीं है, लेकिन विविधता जो है जब हम उसके निकट जाते हैं तो विविधता दिखाई पड़ती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, अर्थात प्रत्येक वस्तु के अंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। ये सबसे आगे आगे, अतः भौतिक उन्माद की विषमता के विरुद्ध प्रथम निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन परमेश्वर को प्राप्त करने में निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का समावेश हो जाता है। तो जब परमेश्वर को हम प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, तो निराकार ब्रह्म का समावेश हो जाता है। आप जानते हैं कि निराकार ब्रह्म भगवान के शरीर का प्रकाश है, तो फिर उसका विशेष महत्व नहीं होता कि नहीं। अभी हम सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा महत्व देते हैं, सूर्य के प्रकाश को, लेकिन जो सूर्य लोक में होते हैं, सूर्य देवता के साथ होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश को महत्व नहीं देते, वो तो सूर्य लोक में सूर्य देवता के साथ हैं। उसी प्रकार से भगवान के साथ जब हम आ जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति को फिर ज़्यादा महत्व नहीं देते हम लोग। आगे भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार, और दूसरी अवस्था परमात्मा साक्षात्कार, और तीसरी अवस्था भगवत साक्षात्कार, है ना। जैसे कि रेलगाड़ी का साक्षात्कार, पहले प्रकाश का साक्षात्कार, और दूसरा कई डिब्बों का साक्षात्कार, और तीसरा अनेक यात्री हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान का भी। आगे जैसा कि प्रथम स्कंध में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि परम पूर्ण के तीनों पहलुओं ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। प्रथम स्कंध में एक श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी को पता है वो श्लोक? हाँ हाँ, ये जो श्लोक है ये हमारा जो है मतलब परम सत्य को समझने की चाबी है, की वर्ष, उसको की वर्ष बोलते हैं ना, भगवान को समझने का ये चाबी जैसा है ना। तो तीन पहलुओं हों जाना जानना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद हेडिंग में लिखने, प्रतिबोध मात्रम भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, ये भौतिक शरीर है ना, तो भौतिक शरीर में भौतिक क्लेश होते हैं, इसमें क्या है, जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, और फिर जन्म वृद्धि अस्तित्व, फिर बढ़ाव रुकना, फिर प्रजनन, फिर और उत्पन्न होने, उत्पन्न होते हैं शरीर, फिर क्षय नष्ट होने लगता है, फिर विनाश, पूरा विनाश हो जाता है। तो ये छह परिवर्तन पदार्थ में हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध है जिसमें जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वदा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। ये निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। निर्विशेष ब्रह्म में आप इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें रस नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म में वो रस नहीं है, लीलाएं नहीं हैं भगवान की, लेकिन जो प्रथम साक्षात्कार है वो क्या है, आप कष्ट से छूट गए, भौतिक शरीर नहीं है। तो निर्विशेष ब्रह्म में आप अगर जाते हैं तो आप कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये भौतिक शरीर का कष्ट नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। फिर आगे, परमेश्वर हर वस्तु के परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वो उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है ना। तो यह प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भौतिक संसार में हम प्रेम नहीं कर सकते किसी से, इस भौतिक संसार में हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का नाम होता है लेकिन वो प्रेम होता नहीं है, वो क्या होता है, राग द्वेष होता है, राग और द्वेष प्रेम नहीं है। तो भौतिक शरीर में हम प्रेम कर नहीं सकते किसी से, है ना, लेकिन भगवान के साथ में जब हमारा संबंध होता है तो भौतिक शरीर से अलग हमारा संबंध आत्मा का आत्मा से होता है, जैसे पिता पुत्र एक ही जैसे, तो उसी प्रकार से जो है भगवान के साथ ही हमारा प्रेम संबंध हो सकता है ना। और तब हम फिर प्रेम भगवान की सृष्टि से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि पहले भगवान की सृष्टि से प्रेम करें तो आप प्रेम नहीं कर सकते, भगवान की सृष्टि से आप प्रेम नहीं कर सकते, है ना। गीता में तो भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, आप द्वेष ना करो किसी से, यही कर सकते हो, प्रेम नहीं कर सकते किसी से, फिर आप द्वेष ना करें, अभ्यास करो कि द्वेष ना करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा मैत्रीभाव करुणा भाव ये कर सकते हैं, फिर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम किससे आप कर सकते हैं, भगवान से, पहले भगवान से प्रेम होगा। आप शुद्ध होते हैं, देह की भावना से मुक्त होते हैं तो आत्मा के स्तर पर आप पहले भगवान से प्रेम करते हैं, और फिर भगवान से प्रेम करने के बाद फिर भगवान से संबंधित हर वस्तु से आप प्रेम कर सकते हैं, तब प्रेम आपका फैल सकता है कहीं भी। इस भौतिक जगत में भी आपका प्रेम हो सकता है भगवान के संबंध में, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं उन्माद नहीं है, भौतिक संसार में क्या है वो प्रेम क्या होता है, उन्माद होता है, उन्माद कभी इसको भावुकता बोलते हैं या सेंटीमेंट बोलते हैं। ये भौतिक संसार में क्या होते हैं, आपके सेंटीमेंट होते हैं, भावुकता होती है, उन्माद होता है, राग या द्वेष होता है। काम और क्रोध है ना, तो ये संबंध भौतिक संसार से है। प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। ये देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है। जब तक हमारा भौतिक शरीर और भौतिक मन है तब तक हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। आगे अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निराविरत शुद्ध प्रेम के पात्र हैं, क्योंकि वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। आगे इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रवाहित होती है। शाश्वत सुख की अंतहीन, अजस्र बताया है, शाश्वत सुख अंतहीन धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं होती है ना। अजस्र सुखम, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं, भगवान के साथ का संबंध कभी टूटता नहीं है। अतः उसमें ना शोक है और ना भय है। इस श्लोक के शब्द है ना, अभयम और विशोकम, है ना। भगवान के साथ संबंध में ना तो शोक है और ना भय है। भौतिक संसार में होता है ना, किसी के साथ भी आप संबंध बनाते हैं अच्छा, फिर आपको शोक होता है कि मैंने क्यों बनाया अच्छा संबंध, पछताते हैं, शोक होता है, पछताते हैं, या भय पैदा होता है ना। भगवान के साथ संबंध में ना तो शोक है ना भय है। ऐसा सुख शब्दों के द्वारा आवरणा नहीं है, जो बताएंगे शब्दों न यत्र, उसका ही भी शब्दों के द्वारा आवरणा नहीं है, आप शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो वैदिक यज्ञ हैं, सकाम कर्म हैं, उनके द्वारा ये सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आगे किंतु हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है वो है उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है ना। उपनिषदों की विचारधारा क्या है, निर्गुण। उपनिषद किसका वर्णन करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं, इसे कहते हैं ज्ञान कांड। वेदों का जो ज्ञान कांड है तो वो जो है कर्मकांड, ज्ञान कांड केवल विशेष भांड। कर्मकांड है ना, जो बताया गया शब्दों नयत्र पुरुकारक वान क्रियार्थो, है ना, तो वो तो जो है विष का बर्तन है ही है, विष है ही है कर्मकांड। और ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में निराकार ब्रह्म की जो धारणा है तो वो भी विष है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है ये सुख है। निर्गुण ब्रह्म में आपको ये सुख नहीं मिलेगा, आप दुख से छूट जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म में की प्राप्ति में आप दुख से छूट गए, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का दुख नहीं है आपको, लेकिन तो भी वो सुख थोड़ी मिलेगा जो भगवान के साथ संबंध बनाने में। तो प्रभु लिखते हैं उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यून अधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा का एक प्रकार से विरोध करना है। भौतिक वस्तु, निर्गुण ब्रह्म क्या है, भौतिकता नहीं है, इसलिए जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट नहीं है, है ना, इतना तो है, लेकिन भगवान का वो प्रेम नहीं है, भगवान की वो सेवा नहीं है, है? वो भगवान का रस नहीं है, लीलाएं नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु ये परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। हाँ, तो उपनिषद जो है निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उपनिषदों का ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर के पास इंद्रियां नहीं है। परमेश्वर उपनिषदों में वर्णन किया गया है, अपाणि पादो जब नो गृहीतो, कि बिना हाथ पैरों के वो जो है ग्रहण भी करते हैं और चलते भी हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के दिव्य इंद्रिया नहीं है, मतलब हाथ पैर नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है, वे सभी दिव्य और भौतिक पहचान के कलमश से रहित हैं। भगवान के शरीर की जो इंद्रियाँ हैं वो दिव्य हैं। भौतिक पहचान के कलमस से रह गए, ये भौतिक शरीर में पहचान नहीं है ना। आगे यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है। तो भगवान के साथ रहते हैं जीव, वैकुंठ में जो जीव रहते हैं भगवान के साथ, हाँ, तो वे भी इंद्रियों से रहते हैं, उनके पास भी इंद्रियां हैं, भगवान के पास इंद्रियां। हरि बोल हरि बोल। कई लोग सो रहे हैं यहाँ, है ना, यहाँ सोने के लिए आ रहे हैं, है ना। आपको खड़े हो जाना चाहिए, जिनको नींद आती है उनको खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ सोना बहुत निंदा की बात है, सोने का सोने की आदत जो है बहुत निंदनीय है। यहाँ पर सोना, कोई कहता है कि भाई सोना भी अच्छा है, यहाँ आकर के सो जाएं तो भी अच्छा, ना आने से अच्छा है, लेकिन इसमें अपराध भी जो है ज़्यादा होता है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ आकर के अगर आप सोते हैं तो उसमें अपराध ज़्यादा होता है, फायदा भी है कुछ कि आप ना आने से अच्छा है कि आप यहाँ आकर के सो रहे हैं, लेकिन अपराध ज़्यादा है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जा कर के सो जाओ, यहाँ मत बैठो, अगर नींद आ रही है खड़े हो जाओ या कुछ और उपाय करो जागने के, लेकिन सोना बहुत खराब, बहुत बहुत निंदा की बात है, इसमें अपराध होता है ना। तो मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा हूँ, भगवान के साथ जो मुक्त जीव है वो भी इंद्रियों से रहित नहीं है, मतलब उनके पास भी इंद्रियां हैं। तो हम भगवान के साथ जब होते हैं तो हमारी इंद्रियां होती हैं, लेकिन ब्रह्म के साथ निराकार ब्रह्म में हमारी इंद्रियां नहीं होती, आप समझे। निराकार ब्रह्म जो होते हैं, हम जाते हैं तो हमारे पास भी इंद्रियां नहीं होती, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के पास इंद्रियां, हमारे पास भी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां होती हैं। और कैसी इंद्रियां होती हैं, दिव्य इंद्रियां होती हैं, ये भौतिक इंद्रियां नहीं है, दिव्य इंद्रियां हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान संभव ना हो पाता। अगर इंद्रियां ना होती तो सुख कैसे मिलता, भगवान को जो है हमसे सुख प्राप्त होता है और हमें भगवान के द्वारा सुख प्राप्त होता है, कैसे, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां हैं। आगे, भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित हैं, शुद्ध हैं। भगवान की भी इंद्रियां और हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से रहते हैं, है ना। भौतिक कलमश में ये भी है, जैसे हमारी ये आँखें हैं, भौतिक आँखें ना, है भौतिक दृष्टि है, तो भौतिक दृष्टि में हमें पीछे की चीज़ भी नहीं दिखाई पड़ती है, सामने भी बहुत पास की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, बहुत दूर की चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, बहुत छोटी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती, बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं देख पाते हमारी है। ऐसी कान सुनने की भी इंद्रिय है, हम सुन नहीं पाते हैं, है ना, तो हमें माइक में बोलना पड़ता तब आप सुन पाते हैं। वहाँ भगवान के धाम में कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं, है ना, और जो भगवान बोलते हैं सबको सुनाई पड़ता है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, है ना, और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर तक लोग बैठे हैं, है, और सब सुनते हैं, माइक की जरूरत नहीं है, इंद्रियां दिव्य है ना, है ना। तो ये भौतिकता नहीं है इंद्रियों में, हमारी देखने की इंद्रिय में भौतिकता है, इसलिए कई तरह की इससे ये अवरुद्ध होती हैं, सीमित होती हैं, है ना। तो भगवान की इंद्रियां और भक्तों की इंद्रियां कैसी हैं, दिव्य हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है, सत असतः परम। वहाँ पर भ्रामक भौतिक शक्ति का बस नहीं चलता, भ्रामक भौतिक शक्ति माया, भ्रामक भ्रामक है माया। सबसे पहला भ्रम क्या पैदा करती है माया, कि हम ये शरीर हैं, जबकि भौतिक शरीर में हम बंधे हुए हैं, ये हमारी पहचान भौतिक शरीर में कराती है। तो माया जो है ये भ्रामक है और कई प्रकार के भ्रम पैदा करती है, ये मेरा है ना, मैं इसको भोग सकता हूँ, उसमें दुख मिलना है मुझे, और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मुझे सुख मिलेगा और मैं इसके पास जाता हूँ, पतंगा जैसे आग की तरफ जाता है, क्यों जाता है, भ्रम पैदा करती माया। पतंगा क्या सोचता है कि आग के पास मैं जाऊँगा तो मैं सुख भोगूंगा, जबकि उसमें भयानक दुख है और वो जाता है ना। तो भ्रामक शक्ति है माया, तो भौतिक संसार में है, तो वहाँ पर भौतिक माया जो भ्रामक माया है वो लज्जित होती है सामने जाने में, है ना। भौतिक शक्ति का बस नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष वो लजाती है। आगे, भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते। हम जितनी इंद्रियों को भोगने की कोशिश करते हैं ये सब कैसे होते हैं, शोक पैदा करते हैं, है ना। यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, दुख उत्पन्न करते हैं, तो फिर हमें शोक होता है कि मैंने क्यों सुख भोगा। कोई भी सुख आप इंद्रियों से आप भोगते हैं तो बाद में फिर क्या होता है, वो शोक पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत मधुर गीत है, बड़ा अच्छा मधुर गीत है, फिल्मी गीत चल रहा है, सुनते हैं, एक बार सुनते हैं बड़ा अच्छा, दो बार, तीन बार, दस बार, सौ बार, फिर वो बुरा लगने लगता है, हैं, फिर आपको शोक होता है कि मैं क्यों सुन रहा हूँ उसको, तो बेकार है कि नहीं। मान कोई चीज़ खा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट खाते जाएँ, फिर वो जो है उसका स्वाद फिर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, फिर आपको शोक होता है कि मैं क्यों खा रहा हूँ इसको, कि नहीं। हर चीज़ में जो है शोक, ये संस्पर्श जाप होगा दुख ही होने, वो दुख उत्पन्न करते हैं तो शोक होता है, है ना। यहाँ पर ऊपर लिखने भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, यानी शोक पैदा करेंगे, है ना। किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियाँ शोक रहित हैं। भौतिक और आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना ना करते हुए इसे समझे, है ना। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के धाम में इंद्रियां नहीं होती, भगवान के धाम में इंद्रियां होती हैं, है ना। आगे, भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। अविद्या है, अविद्या का मतलब क्या है, वही है जहाँ हमें दुख मिलना है वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि मैं मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख दिखाई पड़ता है जब जिसमें दुख है, अविद्या है। भौतिक जगत में इंद्रियाँ अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में अपनी खुद की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है। ये भौतिक इंद्रियाँ हमें क्यों प्राप्त हुई हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक इंद्रियाँ किस लिए होती हैं, भगवान की सेवा के लिए। हम आध्यात्मिक जगत में जब होते हैं तो हमारी इंद्रियाँ किस लिए होती है, भगवान की सेवा के लिए होती हैं। जब हम जो है हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक इंद्रियाँ हमारी समाप्त हो जाती हैं, फिर भौतिक जगत में भौतिक इंद्रियाँ हमको प्राप्त होती हैं। भौतिक इंद्रियाँ किस लिए हैं, अपनी तुष्टि के लिए, और आध्यात्मिक इंद्रियाँ किस लिए हैं, भगवान की तुष्टि के लिए। अतः वहाँ इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलमश से अप्रभावित होने से अबाध और अविच्छिन्न रूप से होती है। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति, भगवान की इंद्रियों को हम संतुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की प्रयास कोशिश नहीं करते। इस भौतिक जगत में हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख और दुख मिलते हैं। आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियों को अविच्छिन्न सुख मिलता है, अबाध बाधा रहित सुख मिलता है ना। ये ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक हैं, अतः वहाँ इंद्रिय तृप्ति भौतिक कलमश से अप्रभावित होने से अबाध और अविच्छिन्न रूप से होती है, क्योंकि इंद्रियाँ आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होती हैं। फल स्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों दिव्य पात्रों को समान रूप से होता है। दोनों मतलब भगवान की इंद्रियाँ संतुष्ट होती हैं तो हमारी इंद्रिय संतुष्ट होती हैं, अबाध, इसमें कोई बाधा नहीं है, है ना। अनंतम, अंत नहीं है, सुख का अंत नहीं है। आगे, चूंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः यहाँ भौतिक प्रयासों की या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट वर्णन पांचवें स्कंद में होगा। पांचवें स्कंद में एक श्लोक है, ब्रह्म सौख्यम नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विट भजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि जस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सौख्यम अनंतम है, इस मनुष्य जीवन का जो देश है वो दिव्य तपस्या के द्वारा हम अपने को शुद्ध करें, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि, जिसके द्वारा हमारी चित्त शुद्धि होगी और उससे ब्रह्म सुख कैसे प्राप्त होगा, अनंतम अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, है ना। हमारी इंद्रियों की जो संतुष्टि होगी वो कैसी होगी, अनंत होगी, यानी अंत नहीं होगा कभी भी, तुष्टि का अंत नहीं होगा। ऐसे भौतिक जगत में क्या होता है, हम इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, है ना, तो वो तुष्टि कैसी होती, आदि अंत बनता, हाँ एक समय पर शुरू होती है और एक समय में समाप्त हो जाती है और फिर दुख पैदा करती है, आदि बनता है। तेज रमते बुधा, तो बुद्धिमान लोग उसमें नहीं रमते, ऐसे इंद्रिय सुख में बुद्धिमान लोग नहीं रमते। लेकिन ये जो इंद्रिय सुख है जो भगवान के साथ मिलता है वो अनंत है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा की जाती है, भगवान को सुख दिया जाता है, उससे सुख प्राप्त होता है अपने को, ठीक है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, बहुत लंबा तात्पर्य था, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, जब मैं प्रश्न करूँगा, हाँ जी बोलिए। ये जो लीला बताते हैं ना कि हम भगवान हैं और हम जो दुख भोग रहे हैं ये हमारी लीला है, ये मायावादी लोग हैं। जो मायावादी लोग हैं तो वो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। जब प्रश्न किया था आप भगवान हैं तो आप दुख क्यों भोग रहे हैं, तो कहते हैं ये हमारी लीला है, हम दुख भोगते हैं जिससे कि आगे चल करके हम सुख भोगेंगे। तो प्रभुपाद कहते कि मैं तुम्हारे सिर में 100 जूते मारूं फिर तुम आराम, फिर तुम सुख भोगना ना, तो मूर्खता है। हम भगवान हैं और हम दुख भोग रहे हैं, है ना। भगवान का जो है जो सुख होता है वो ऐसा नहीं होता कि हम दुख भोगें तो फिर हमें सुख मिलेगा, है ना। तो भौतिक संसार में दुख ही दुख है, है ना। तो ये मूर्खता है कि हम दुख भोगते हैं तो फिर बाद में हमें सुख मिलता है, ये एक गलत विचारधारा है कि दुख भोगने के बाद हमें सुख मिलेगा, है ना। दुख भोगने के बाद सुख मिलेगा, ये तो माया हमें दुख पहुंचाती है, है ना। वो सुख जो मिलता है वो कैसा सुख मिलता है कि जैसे कि पहले जो राजा लोग होते थे ना, यूनान के राजा होते थे, तो वो किसी अपराधी को जब सजा देते थे तो पानी में डुबोते थे, लेकिन मर ना जाए इसे थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकाल देते, है ना। तो वो सोचता है कि हाँ मैं सुख भोग रहा हूँ, ये क्या सुख भोग रहा है ना। तो ऐसा विचार कि हम सुख भोगने के लिए दुख भोगना जरूरी है, ये मूर्खता का विचार है, यही माया का सुख है ना। तो भगवान का सुख ऐसा नहीं है, भगवान का सुख क्या है, अबाध है, अविच्छिन्न है, अनंत है, विशोकम, इसमें कोई शोक नहीं है, है ना। तो भगवान का ऐसा सुख नहीं है ना, ये माया जगत में ऐसा है, है ना। आपके प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया, कुछ और है। भेद, अच्छा भेद कैसे किया जाए, जो भक्त होता है तो वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, सुख दुख में हर स्थिति में वो भगवान का गुणगान करता है, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि चूंकि वो भौतिक शरीर से ऊपर उठा हुआ है इसलिए वो हर स्थिति में कष्टकर्म में तो वो भी करता है, ऐसी बात नहीं कष्ट का अनुभव नहीं करता, लेकिन उसकी दृष्टि जो है दूसरी तरह की होती है, उसकी दृष्टि दूसरी तरह की होती है कि भौतिक शरीर मुझे मिला है तो मैं कष्ट तो पा रहा हूँ, भौतिक शरीर के कारण तो कष्ट है ही है, है ना। ऐसी बात नहीं कष्ट का अनुभव नहीं करता, वो कष्ट का अनुभव करता है वो, है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है दूसरे प्रकार की होती है ना। तो जब भौतिक शरीर से छूट जाएगा, आध्यात्म शरीर प्राप्त होगा, है ना, तो वो इसको अनित्य मानता है कि ये अनित्य है ना। और इन भौतिक और इन आध्य और इन भौतिक सुखों में वो रमता नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के सुखों में वो रमता नहीं है ना। नतेश्वर रमते बुधा, किससे पहचान होती है उसकी, कि वो जो है भगवान के गुणगान में आनंद लेता है, भगवान के श्रवण कीर्तन में आनंद लेता है। तो ये जो है आध्यात्मिक सुख है। जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जब कुछ सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की सेवा करते हैं ना, नवदा भक्ति के कार्य हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ये जो सुख है ये जो है उसका जीव का असली सुख है, जिसमें अपना अधिकार है, जिस सुख में हमारा अधिकार है, हैं भगवान की संतुष्टि में जो है अब हमें संतुष्टि होने लगती है, तो वो जो है हमारी शुद्धि है, है ना। लेकिन जब हम अपनी संतुष्टि चाहते हैं, भगवान से स्वतंत्र होकर के हम अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वो जो है उल्टा है, भौतिक चेतना है। ठीक है ना, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। अच्छा उदम प्रिया प्रभु कुछ बोलना है? अब भक्तों के जो है दुखों का अंत ही नहीं है, कितना दुख भोगते हैं और फिर भी जन्म मरण उनकी परंपरा कर्मों की जो श्रृंखला है वो चलती रहती है, दुखों का अंत नहीं है, अनंत दुख है। ठीक है, भक्त के जीवन में दुख मिल रहे हैं लेकिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसने अब अपनी विचारधारा बदल दी है कि मैं भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी हो सकता हूँ। इसलिए आपका प्रश्न है? नहीं, वो प्रेम जो है वास्तविक नहीं है, ये शरीर पर आधारित है, हम शरीर पर आधारित ये संबंध बनाते हैं परिवार के, कि मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, है ना। हम तो आत्मा को नहीं देखते, हम तो आत्मा को जानते नहीं कि कौन आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा को शरीर की पहचान बना करके हमने संबंध बना रखे हैं। ठीक है ना, लेकिन जो भक्त होता है तो इन संबंधों का निर्वाह करता है, इन संबंधों के अनुसार वो व्यवहार करता है ना, लेकिन संबंधों को अनित्य मानता है कि संबंध जो है नित्य नहीं है, और जहाँ तक हो सके भक्तों की संगति को महत्व देता है, वो अपने परिवार का हो या किसी दूसरे परिवार का हो, हाँ भक्तों की संगति को महत्व देता है। ठीक है ना, प्रथम प्रिया प्रभु सूचना देना चाहते हैं।